कुर्बानी के हवाले से कोई ख़ास एहतियात, कोई ख़ास अगर आप चीज़ बताना चाहें?
सबसे पहली बात तो ये है कि कुर्बानी के हवाले से हर शख्स को अपने ऊपर गौर कर लेना चाहिए कि उस पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं।
ठीक है,
बहुत से लोग कि जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है तो उन्हें चूँकि शरी मसला पता नहीं होता और कुर्बानी नहीं करते, जबकि कुर्बानी करनी होती है। अब उसकी एक दो मिसालें मैं अर्ज़ करता हूँ। जैसे उसकी एक मिसाल ये है कि किसी शख्स ने कोई प्लॉट ख़रीद के रखा हुआ है कि यहाँ पर अपना घर बनाऊँगा और वो ख़ुद किराए के मकान में रहता है, तो अब होता यह है कि जेहन में ये होता है कि हम तो ख़ुद किराए पे रह रहे हैं और जितनी आमदनी है उसमें हमारा गुजारा हो रहा है, जबकि एक प्लॉट जो है वो पूरा रखा हुआ है, तो उसकी वजह से कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसी तरीके से हज के लिए पैसे जोड़ रहे हैं, अब हज करना है अगले साल और अब उसकी अमाउंट जो है वो मौजूद है, तो अब ये समझ के कि भाई ये पैसे तो हज के लिए रखे हुए हैं, ये कोई ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ी है, जबकि इसकी वजह से भी कुर्बानी वाजिब हो जाए।
बड़े बारीक मसाइल हैं।
इसी तरह तीसरा मसला है बच्चियों की शादी करनी, अब उनके लिए जहेज़ बना के रखा हुआ, अब वो जहेज़ बना के रखा हुआ तो उसे ये समझा हुआ है कि भाई ये तो बच्ची के लिए, हालांकि उसकी अमाउंट की वजह से कुर्बानी बहुत मरतबा वाजिब हो रही होती है। बाद अवकात ये भी होता है कि वो जहेज़ का सामान जो है वो किसी एतबार से उस बच्ची की मिल्क पहले ही से कर दिया जाता है, तो अब ये समझा जाता है कि भाई ये तो इसकी शादी का सामान है, इस पर तो इसकी ये तो शादी में साथ जाएगा, हालांकि इसकी वजह से उस बच्ची पर कुर्बानी वाजिब हो चुकी होती है। कहने का मकसद ये है कि ऐसी बहुत सारी सूरतें होती हैं कि जिनकी वजह से कुर्बानी वाजिब होती है लेकिन तवज्जो ना होने की वजह से लोग नहीं करते। तो पहली बात तो यही है कि अपने वाजिब के एतबार से ये देख लिया जाए कि मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। दूसरे नंबर पर यह है कि कुर्बानी करनी है तो कुर्बानी करने में कुछ लोग वो हैं कि जिनको पैसा खर्च करने के अंदर दिली एतबार से तकल्लुफ़ ज़्यादा करना पड़ता है, यानी कुछ लोग दूसरी तरफ हैं लेकिन कुछ लोग इस तरफ होते हैं कि सस्ती से सस्ती कुर्बानी करेंगे, हल्की से हल्की कुर्बानी करेंगे और पैसों के एतबार से और बहुत सारी चीज़ें सोची होती हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो एक तो ये है कि गुंजाइश इतनी है, ज़रूरियात ज़्यादा हैं, कुर्बानी वाजिब है, गुंजाइश इतनी है कि यही कर सकते हैं, तो मजबूर है तो उसके एतबार से तो चले थोड़ा सा एक रुख्सत की सूरत बनती है। लेकिन जिसका ऐसा मसला नहीं है और वो एक दूर पार के जो है वो ख़र्चे सोच के बैठा हुआ और या थोड़ा सा बैंक बैलेंस ज़्यादा अच्छा ही होना चाहिए, उसकी वजह से हल्की कुर्बानी करने की कोशिश करता है, तो ये एक किस्म का जो है वो इबादत में तंग दिल होना है। और इबादत के बारे में हुक्म यही है कि इबादत में तंगी का इजहार नहीं होना चाहिए। जैसे रोज़ेदार के बारे में फरमाया कि वो बार बार जो है ना वो होंठों को जो है ना वो पानी से तर कर रहा है, लोगों को पता चला भाई इसको बहुत रोज़ा लग रहा है, तो फरमाया कि इबादत में दिल तंग होना अच्छा नहीं। यही मामला कुर्बानी का भी है कि कुर्बानी ऐसी ना हो कि जिससे ये लगे कि यार इसने बड़ी मुश्किल से ही की है, इसका दिल नहीं कर रहा था, तो खुद अपनी कल्बी कैफियत के एतबार से भी कुर्बानी जो है वो खुश दिली से होनी चाहिए। और इसीलिए हदीस मुबारक के अंदर फरमाया भी ये गया है, फरमाया कि यौमुन नहर जो है यानी कि ये जो ईद के अयाम हैं इनमें जो अफजल अमल है, जो अफजल कुर्बानी है वो वही है जो कीमत के एतबार से महंगी हो और गोश्त के एतबार से वजनी हो। तो लिहाजा कुर्बानी, अब आदमी बात है ऐसी कुर्बानी वही होती है जो ज़्यादा जो है वो पैसों से की जाती, तो एक तो इस एतबार, दूसरा साथ ही फरमाया कि खुश दिली से कुर्बानी करो क्योंकि ये क़्यामत के दिन पुल सिरात पर तुम्हारी सवारियाँ होंगी, तो खुश दिली से कुर्बानी करनी चाहिए। तो अमली एतबार से, कल्बी एतबार से भी, अमली एतबार से भी ये होना चाहिए कि कुर्बानी खुश दिली के साथ की जाए। तीसरे नंबर पर ये है कि कुर्बानी के साथ जो मुस्तहबात शरीयत ने बताए हैं उन पर उसी एतबार से अमल होना चाहिए, जो फरमाया कि एक तिहाई रिश्तेदारों के लिए, एक तिहाई गरीबों के लिए और एक तिहाई जो है वो अपने लिए, अक्सर बेशतर सूरतों में तो यही हुक्म है, तो लिहाजा इसी के मुताबिक अमल करना चाहिए। चौथे नंबर पर यह है, जैसे वो पहले बात थे कि हल्की से हल्की करना, तो अब दूसरी तरफ आ जाता है महंगी से महंगी करना, तो अब वो जो महंगी से महंगी करना है वो इबादत और खुदा की राह में माल खर्च करने के ज़ौक के साथ है तो बहुत अच्छी बात है और बड़ी फजीलत वाली बात है, लेकिन अगर उसके साथ रियाकारी, दिखावा, शोहरत और नमूदो नुमाइश अगर उसके साथ जुड़ जाए तो वो कुर्बानी जो है वो बर्बाद हो जाएगी। और फिर वही है कि जो कुरान पाक की आयत मुबारक है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक्वा मिनकुम, कि अल्लाह की बारगाह में इन कुर्बानियों के खून और गोश्त नहीं पहुँचते बल्कि तुम्हारी तरफ से तकवा है जो अल्लाह की बारगाह में पहुँचता है, तो लिहाजा इखलास जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और फिर इसके साथ ये है कि कुर्बानी के जानवर जो है ना वो रखने, ज़बह करने और उसके बाद उसका गोश्त बांटने या रखने के एतबार से जो हुकूकुल इबाद का मामला है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो तलब होता है कि قربانی کا جانور رکھنے کی وجہ سے ایک وہ ہے کہ جس سے بچت کی صورت ہی نہیں ہے نا، کہ بھائی جانور رکھنا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ تو جگہ گرے گی، اس کی وجہ سے کچھ تو ماحول تبدیل ہوگا، اور ایک یہ ہے کہ لاپرواہی کے ساتھ جس تکلیف سے بچایا جا سکتا ہے لوگوں کو
بھی نہیں بچا،
اس تکلیف میں بھی لوگوں کو مبتلا کرنا، اور اسی طرح پھر وہی رات کا شور شرابہ جھمگٹا مرد و عورت کا اختلاط، تو یہ والی جو ساری چیزیں ہیں پھر ان سے بچنا ضروری ہے۔ پھر قربانی کرنے کے ساتھ اس کا جو خون ہے اور اس کی جو آلودگی ہے، آلائشیں ہیں، صفائی کا خیال کرنا ہے، جو خود ہماری صحت کو بھی تباہ کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی تکلیف دہ اور نقصان دہ ہو سکتے ہیں، ان چیزوں سے بچنا جو ہے یہ بڑا اہم۔